तारीख 22 मई दिन शुक्रवार, दिन भर के साथ में विनीत खरे। सऊदी अरब में शिया मस्जिद में धमाका, कई लोगों के मरने की खबर। राजस्थान में गुजर आंदोलनकारियों और सरकार के बीच गतिरोध जारी। विवेचना में आज बात विश्व प्रसिद्ध स्पिनर इरापाली प्रसन्ना की।
उनके जैसे ऑफ स्पिनर मैंने देखा नहीं था। सब कहते थे कि गुलाम अहमद बढ़िया था उससे, लेकिन जब मैं खेलना शुरू किया और जब रणजी ट्रॉफी में उनके सामने जब रन बनाना शुरू किया तो मुझे लगा कि वही सबसे अच्छे ऑफ स्पिनर है।
और कड़ी सुरक्षा के बीच पाकिस्तान में 6 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच।
ऐसा दूसरा अगर होगा तो फिर हम 20 साल के लिए गए, तो ये बड़ा अहम कदम है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार फैसल मोहम्मद अली से। सऊदी अरब में शियाओं की एक मस्जिद में एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को बम से उड़ा लिया। धमाके में बहुत सारे लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबर है। धमाका पूर्वी प्रांत में हुआ है जहां शिया काफी तादाद में रहते हैं। पिछले साल एक ऑडियो टेप सामने आया था जिसमें शियाओं पर हमले की बात कही गई थी। कहा गया था कि टेप इस्लामिक स्टेट ने जारी किया है। दूसरी ओर यमन की राजधानी सना में एक शिया मस्जिद पर हमला हुआ है जिसमें 13 लोग जख्मी हो गए हैं। इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने सीरिया और इराक बॉर्डर पर मौजूद आखिरी सीमा चौकी पर भी कब्जा कर लिया है। ये चौकी अब तक सीरियाई फौज के कब्जे में थी। इराक में वो हब्बानिया के बाहर के सरकारी सुरक्षा घेरे को तोड़ने में कामयाब रहे हैं। हालांकि वहां शिया मिलिशिया उनका सामना करने के लिए जमा हो रहे हैं। आईएस लड़ाके अब बगदाद की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बीच सीरिया के विद्रोही गुटों के एक समूह ने एक अस्पताल पर कब्जा कर लिया है जहां तकरीबन 150 सरकारी फौजी पिछले माह भर से फंसे हुए थे। जॉर्डन में बोलते हुए इराक के डिप्टी प्रधानमंत्री साले अब्दुल मुतल्लिक ने चेतावनी दी। ये साफ है कि इस्लामिक स्टेट का मामला महज स्थानीय नहीं है। इस मामले पर वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास एक साफ रणनीति होनी चाहिए, वरना जिन्हें ये लग रहा है कि खतरा पास नहीं है उन्हें इसका तजुर्बा होगा। अगर इस्लामिक स्टेट से निपटने की रणनीति तैयार नहीं होगी तो सारी दुनिया इसका नतीजा भुगतेगी। इराकी उप प्रधानमंत्री के शब्द। थाईलैंड में अधिकारियों ने उन 20 लोगों को हिरासत में ले लिया है जो फौज के जरिए किए गए तख्ता पलट के 1 साल पूरे होने पर प्रदर्शन कर रहे थे। राजधानी उत्तर पूर्व में छोटे प्रदर्शनों का आयोजन हुआ। सैनिक शासन ने राजनीतिक कारगुजारियों पर प्रतिबंध लगा रखा है। प्रेस पर सेंसरशिप लागू है और जो इसका विरोध कर रहे हैं उनका मुकदमा फौजी अदालतों में चलाया जा रहा है। फौज के पूर्व प्रमुख और वर्तमान प्रधानमंत्री प्रयुत चानोचा ने कहा है कि उन्होंने यिंगलक चिनावट की सरकार पर तख्ता पलट कर दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि मुल्क पर खतरा है। उन्होंने अगले साल चुनाव करवाने का वादा किया है। म्यांमार का कहना है कि नौसेना बांग्लादेश की सीमा पर नौका में फंसे 200 लोगों को किनारे पर लाने में कामयाब रही है। इन लोगों को अब संयुक्त राष्ट्र से मदद हासिल हो रही है। म्यांमार के द्वारा किया जाने वाला ये पहला बचाव कार्य है। उस पर अंडमान सागर में फंसे हुए अप्रवासियों के मामले को लेकर भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना हुआ है। फंसे हुए लोगों में बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान हैं जिनके खिलाफ म्यांमार में भारी अत्याचार हो रहा है और उन्हें नागरिकता का अधिकार भी हासिल नहीं है। कहा जा रहा है कि 2000 लोग अभी भी नौकाओं में फंसे हुए हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा में आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर का पहला अंक। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी मैं हूं विनीत खरे। सऊदी अरब में एक शिया मस्जिद पर जुमे की नमाज के दौरान हमला हुआ है। जो अभी तक रिपोर्टें आई हैं उसके मुताबिक कम से कम 10 लोगों की इस हमले में मौत हुई और लगभग 70 लोग घायल हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये एक खुदकुश हमला था। ये हमला उस वक्त हुआ है जब सऊदी अरब यमन के शिया विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमलों में शामिल है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स कहा कि अल कदीह ग्राम के इमाम अली मस्जिद में एक बड़ा धमाका हुआ। मस्जिद में कहा जा रहा है कि करीब 150 लोग मौजूद थे और अभी तक हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। सीधे चलते हैं सऊदी अरब के शहर जेद्दा, वहां से पत्रकार बेहजात अयूब नजमी इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नजमी साहब, क्या ताजा जानकारी है अभी तक आपके पास?
सर, पहली तो चीज ये कि एक छोटा सा गांव है अल कदीह और ये अल कदीह मिला हुआ है ततीब से और ये पूरा एरिया जो है शिया बहुत सिंचक लोगों का है। ज्यादातर शिया यहाँ पर रहते हैं। یہاں پر جمعے کا دن جو ایک خاص آپ کہہ لیجئے کہ پوجا کا دن ہوتا ہے, اس دن یہاں پہ جمعے کی نماز کے بیچ میں ایک آتمگھاتی جو ہے بم دھماکہ ہوا ہے, اور یہ ایک مسجد میں جس کا نام ہے امام علی مسجد, اس کے اندر ہوا ہے.
جی, اور ابھی تک کسی نے ذمہ داری نہیں لی ہے. تازہ مرنے والوں کی خبر آپ تک کتنی پہنچی ابھی تک نجمی صاحب؟
جی سر, غیر سرکاری طور پہ بتایا جا رہا کہ 7 لوگ ہیں.
اچھا اچھا نجمی صاحب,
اور
جی
اور قریب 27 جو ہے وہ گھائل ہیں.
اچھا, یعنی مرنے والوں کی جو فگرز آ رہے ہیں وہ الگ الگ آ رہے ہیں. ایک چیز اور بتائیں بیجاد ایوب نجمی, مانا جا رہا ہے کہ جو قریب 2000 سعودی عرب سے لوگ ہیں انہوں نے اسلامک اسٹیٹ سے وہ جڑے ہیں, اور کئی سو اس میں سے واپس سعودی عرب لوٹے ہیں. سعودی عرب میں ایسا حملہ ہونا ایسے وقت جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں پورا جو علاقہ ہے وہاں شیعہ سنی کے بیچ تناؤ بڑھ رہا ہے, اسے کیسے دیکھا جائے پھر؟
دیکھیے, یہاں پر جو ایک یہ ہوا ہے بم دھماکہ, اس کو جوڑا جا رہا ہے حوثی سے, کیونکہ سعودی عرب جو ہے جو یمن میں چنی ہوئی سرکار تھی حاجی عبد الرب صاحب کی, جسے جنتا نے چنا تھا, اسے حوثیز نے ختم کر کے اور وہاں پر وہ حالات پیدا کیے جس کی وجہ سے سعودی عرب کو پھر اپنی کولیشن فورسز کے ساتھ وہاں حملے کرنے پڑے. اور یہ مانا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جہاز اور جیزاز میں جو حوثیز نے آپ اٹیکس کیے, میزائل اٹیکس کیے, اس کا ہی کہیں یہ حصہ ہے.
جی, آخری سوال آپ سے ایوب نجمی, کیا سرکار کی طرف سے کوئی وکتویہ کوئی سٹیٹمنٹ ابھی تک آیا ہے اس بارے میں؟
نہیں, ابھی تک کوئی وکتویہ نہیں آیا ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے یہاں پر یہاں کی سینا یہاں کی پولیس, تو میں سمجھتا ہوں بہت جلدی کنٹرول ہو جائے گا. اور ایک چیز یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو ہے بہت کم آپ اس کے حوالے سے بھی یہ امید کی جاتی ہے کہ شیعہ سنیوں کا کوئی بڑا مسئلہ یہاں پہ پیدا نہیں ہو پائے گا.
جیدہ شہر سے یہ تھے پترکار بہجات ایوب نجمی, بہت شکریہ آپ کا کارکرم میں شامل ہونے کے لیے. اور بات راجستھان کی, راجستھان میں گوجر آندولنکاریوں اور سرکار کے بیچ گتیرودھ ابھی بھی بنا ہوا ہے. گوجر سمودائے کے لوگ گروار شام سے بھرتپور ضلع میں ممبئی دلی ریل مارگ پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں, اس سے انیک گاڑیوں کا مارگ بدلنا پڑا ہے. سرکار نے گوجر نیتاؤں کو بات چیت کا نیوتا دیا ہے, لیکن گوجر ترنت کوئی سمادھان چاہتے ہیں. جےپور سے نارائن بارے.
کل تک دلی ممبئی ریل مارگ ریل گاڑیوں کی آوازاہی سے گل و گلزار رہتا تھا, اب وہاں بھیڑ کا کولاہل تو ہے لیکن گاڑیوں کی دھونی سنائی نہیں دیتی. ریلوے کے مطابق 50 سے زیادہ گاڑیوں کا مارگ بدلنا پڑا ہے, اس کھیتر میں سڑک یاتایات بھی پربھاوت ہوا ہے. گرجر گروار شام سے ریل مارگ کو روک کر بیٹھے ہیں, وہ اپنی برادری کے لیے سرکاری نوکریوں میں آرکشن کی مانگ کر رہے ہیں. پوروورتی سرکاروں نے 5% آرکشن کا پراودھان بھی کیا لیکن یہ قانونی وواد میں پھنس گیا. سرکار نے گرجر نیتا کروڑی سنگھ بینسلا کو بات چیت کا نیوتا دیا ہے. راجے کے چکتسا منتری راجندر راٹھوڑ سرکار کی بے بسی کا بیان کرتے ہیں.
اب سارا معاملہ نیائک پرکریا میں ہے اور سرکار وارتا کرنے کے لیے تیار ہے. سرکار کے دروازے کھلے ہیں, کیونکہ اب یہ پورا معاملہ نیائک ریویو کے پردی میں, اسے نیالے اس کا نرنے کرے گا, اس لیے وہ سویدن سیلتا سے سرکار کے ساتھ جو بھی ان کے وشے پر وارتا کرنا چاہے تو سرکار دیا.
ادھر گرجر نیتا بینسلا نے میڈیا سے کہا سرکار نے بات چیت کی پیشکش کی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں اب مکھیا منتری وسندھرا راجے کو خود پہل کرنی ہوگی.
ہم تو کہیں بھی کر لیں, لیکن ہمارے لیے کچھ کرنے کی اگلی پارٹی میں یا اگلی سرکار میں کچھ اچھا شکتی تو ہو. آشا کر رہا ہوں اور میں آپ کے ذریعے اور بھی سورسز کے ذریعے میں ماننیہ مکھیہ منتری کو یہ سندیش دینا چاہتا ہوں کہ وہ سوئم اس کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لیں, ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہم سب کو دے دیں.
راجیہ میں کوئی 10 سال پہلے شروع ہوئے گرجر آندولن کا یہ نیا قدم ہے. اس آندولن نے کوئی 70 سے زیادہ لوگوں کی موت دیکھی ہے, لیکن نہ وہاں کوئی تصویر بدلی ہے نہ آندولن کرنے والوں کی تقدیر. نارائن باریٹ, جے پور, راجستھان.
گوجر سرکاری سیواؤں میں اپنے لیے الگ سے 5% آرکشن کی مانگ کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی گوجروں نے ویاپک پردرشن کیے ہیں, اور جس سے گوجر آرکشن آندولن سے راجستھان مہینوں تک پربھاوت رہا. راجنیتک وشلیشک ارملیش اس کا آکلن یوں کرتے ہیں.
حال کے دنوں میں جو گوجر سماج تھا वो इस मुद्दे पर थोड़ा सा आंदोलित जरूर था कि जाटों को क्यों ओबीसी में ओबीसी की कैटेगरी में शामिल किया गया है प्रशासनिक सेवाओं में, खासकर केंद्रीय स्तर पर, क्योंकि राज्य स्तर पर कुछ राज्यों में रहा है लेकिन केंद्र स्तर पर क्यों किया गया, तो उसमें उनको एक सफलता जरूर मिली कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जाटों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करने का, वो उन्होंने रद्द कर दिया। लेकिन ये जो मुद्दा राजस्थान का स्पेसिफिक मुद्दा है, खासकर ट्राइबल के रूप में उनको दर्ज करने का, ये मुझे नहीं लगता कि बाहर इसका प्रभाव होगा। जम्मू कश्मीर में पहले से ही बहुत सारी इस तरह की जो बिरादरियां हैं उनको आदिवासी श्रेणी में रखा जा चुका है, लेकिन ये बहुत ही सेक्टेरियन इश्यू है और मुझे नहीं लगता कि ये एक समझ और विचार के बाद उठाया गया कदम है। और सच पूछिए तो सरकारी नौकरियां लगातार सिकुड़ और सिमट रही हैं, ऐसे दौर में बहुत सारी राजनीतिक जो धाराएं हैं वो निजी क्षेत्र में चाहती हैं कि अफर्मेटिव एक्शन का दायरा वहां भी तरह का उसको अंजाम दिया जाए। ये कुछ नए पहलू हैं, लेकिन ये गुर्जर जो आंदोलन का नेतृत्व है वो बड़े व्यापक दायरे में सामाजिक न्याय को नहीं लेता और वो सिर्फ कुछ संकीर्ण मांगों तक ही अपने को सीमित रखे हुए है। यही बताता है कि आंदोलन ये बहुत लोकप्रिय जमीन नहीं पा सकेगा।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश।
बीबीसी इंडिया बोल।
नरेंद्र मोदी सरकार का एक साल, क्या हासिल कर पाई एनडीए सरकार? क्या अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी? अच्छे दिन किसके आए? विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने में क्या अड़चने हैं? महंगाई, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी से राहत क्यों नहीं मिल पाई? गुजरे 365 दिनों का क्या है आपका आकलन? इस बार इंडिया बोल में इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 23 मई शाम 7:30 बजे मुफ्त टेलीफोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
70 और 80 के दशक में भारत की स्पिन चौकड़ी बेदी, प्रसन्ना, चंद्रशेखर और वेंकट राघवन की पूरी दुनिया में तूती बोलती थी। उन्होंने कुल मिलाकर 853 विकेट लिए। इरापल्ली प्रसन्ना इस चौकड़ी के महत्वपूर्ण सदस्य थे जिनको उस समय दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ऑफ स्पिनर माना जाता था। प्रसन्ना के 75वें जन्मदिन पर रेहान फजल नजर डाल रहे हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं पर आज की विवेचना में।
Irapalli Prasanna, Gigi Boyan Wanika, Krishna Murthy and Vishnu Mankan. Them boys could rail play cricket on any kind of wicket. They make the West Indies team look so bad.
1971 में जब भारत ने पहली बार वेस्ट इंडीज को उनके घर में ही हराया था तो लॉर्ड रिलेटर ने ये गीत भारतीय टीम के सम्मान में लिखा था। इरापल्ली प्रसन्ना भी उस महान भारतीय टीम के सदस्य थे। प्रसन्ना ने अपना पहला टेस्ट 1961 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। उसके बाद वो 1962 में वेस्टइंडीज गए थे लेकिन उसके बाद उन्होंने 4 साल तक क्रिकेट नहीं खेली क्योंकि उन्होंने अपने पिता से वादा किया था कि वो तब तक भारत के लिए क्रिकेट नहीं खेलेंगे जब तक वो अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल नहीं कर लेते।
वेस्ट इंडीज जाने के पहले हम सेकंड इंजीनियरिंग करता था वो टाइम में। वो मेरा बाप तो बहुत डर हुआ था, क्या ये वो बेटा वो टाइम में क्रिकेट में पैसा भी नहीं था, वो हम क्रिकेट खेल के क्या करेगा, वो बाद में क्या रास्ता में होगा क्या, इसलिए बहुत डर था। वो हमको वेस्ट इंडीज जाने को बहुत रेजिस्टेंस दिया था, तो इसलिए हम वादा दिया था मेरा डैड को दैट ठीक है हम जाएगा वापस आके हम जरूर इंजीनियरिंग कंप्लीट करेगा। आफ्टर आई केम बैक व्हेन आई लॉस्ट माय फादर द ओनली थिंग दैट वाज लिंगरिंग इन माय माइंड वाज दिस प्रॉमिस व्हिच आई मेड टू माय फादर। सो एट दैट टाइम आई सॉफ्ट पेडल्ड माय क्रिकेटिंग एक्टिविटीज बट फोकस्ड ऑन माय एजुकेशन।
यहां एक साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी बहुत मुश्किल होती है। प्रसन्ना ने 4 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी की और वो भी क्या शान से। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने के बाद वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गए जहां उन्होंने 8 टेस्ट मैचों में 49 विकेट लिए। पूर्व कप्तान टाइगर पटौदी ने एक बार प्रसन्ना के उस दौरे के बारे में बात करते हुए कहा था।
Prasanna again found well he couldn't get many LBW which annoyed him but he found that he could turn the ball more
इस दौरे में प्रसन्ना को बहुत LBW नहीं मिले, जिससे वो थोड़ा नाराज भी हुए। लेकिन उन्होंने पाया कि वो गेंद को खासा घुमा रहे हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में लिमिटेड ऑन साइड फील्ड के बावजूद बहुत अच्छी गेंदबाजी की। न्यूजीलैंड में उन्हें और ज्यादा टर्न मिला। उनके बल्लेबाज भी ऑस्ट्रेलिया के स्तर के नहीं थे। वो या तो आगे बढ़कर प्रसन्ना को ब्लॉक करने की कोशिश करते थे या अंधाधुंध प्रहार करने की कोशिश करते थे। हम तीन फील्डरों को बल्लेबाज के करीब लगाते थे और तीन फील्डरों को बाउंड्री के पास। वो या तो बैट पैड आउट होते थे और अगर वो अपने हाथ खोलते थे तो बाउंड्री पर लपक लिए जाते थे।
प्रसन्ना मानते थे कि टाइगर पटौदी उनके सबसे अच्छे कप्तान थे। उनके जाने के बाद वाडेकर आए और उन्होंने उन्हें उस ढंग से नहीं हैंडल किया जैसे पटौदी करते थे। हिंदू अखबार के वरिष्ठ संवाददाता विजय लोकपल्ली कहते हैं,
प्रसन्ना के दिमाग में यह था कि टाइगर पटौदी चले गए हैं। उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है, एक चैप्टर है, पैट गोज एंड आई एम वरिड। तो अब एक मेंटल ब्लॉक था उनका, उनको उनकी तैयारी नहीं थी या दिल यही नहीं मानता था कि शायद अजीत वाडेकर उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वाडेकर का थोड़ा सा झुकाव वेंकट राघवन की तरफ ज़्यादा था। कई कारण थे, वो चाहते नहीं थे मैच हारें। प्रसन्ना जो है बड़े एकदम दिलेर ऑफ थे, जो फ्लाइट करेंगे, बेशक छक्का पड़ जाए ताली बजाएंगे बैट्समैन के लिए, लेकिन अगली बॉल में हो सकता है आपको ट्रैप करके वो आउट भी कर दें। पटौदी ने बहुत अच्छा हैंडल किया था, क्योंकि पटौदी की खासियत ये थी बॉलर्स को वो समझते थे और सब बैक करते थे। पहले कप्तान थे जो बॉलर को जो फील्ड चाहिए वो दिया करते थे, और प्रसन्ना हमेशा यही चाहते थे कि जो वो फील्ड चाहेंगे वो उनको मिले, उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता था। वाडेकर थोड़े से डिफेंसिव थे क्योंकि नए आए थे, पहली बार उनको कप्तानी मिली थी, वो चाहते नहीं थे कि हार से शुरुआत हो या शुरू में मैचेस हारें उनकी कप्तानी खतरे में हो जाए।
1971 के इंग्लैंड दौरे में वाडेकर ने प्रसन्ना के ऊपर वेंकट राघवन को तरजीह दी, हालांकि उस समय प्रसन्ना विश्व के सर्वश्रेष्ठ ऑफ स्पिनर थे।
वेंकट ने जो पहले जो हमारे 10 मैचेस हुए थे प्रैक्टिस मैचेस अगेंस्ट काउंटीज, तो बहुत बढ़िया बॉलिंग की, और उसके साथ दूसरा भी असेट वेंकटराघवन के पास था, जैसे कि फील्डिंग उनकी अच्छी थी स्लिप में और थोड़ी सी बैटिंग भी वो अच्छी करते थे। तो मुझे लगता था कि वो जो असेट था हमारे जीतने में बहुत ही मदद मिली। प्रसन्ना के पास बॉलिंग तो सबसे मुझे लगता है कि अच्छे स्पिनर थे ऑफ स्पिनर, लेकिन जब 71 टूर पर हम गए तो ठीक तरह से उनकी बॉलिंग नहीं हो रही थी, इसके कारण मैंने सोचा कि वेंकट को हमें ज्यादा मौका देना चाहिए।
लेकिन इसके बावजूद अजीत वाडेकर स्वीकार करते हैं कि प्रसन्ना से अच्छा ऑफ स्पिनर उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा।
उनके जैसे ऑफ स्पिनर मैंने देखा नहीं था, सब कहते थे कि गुलाम अहमद बढ़िया था उससे, लेकिन जब मैं खेलना शुरू किया और जब रणजी ट्रॉफी में उनके सामने जब रन बनाना शुरू किया तो मुझे लगा कि वही सबसे अच्छे ऑफ स्पिनर है, और बहुत आत्मविश्वास से बॉलिंग करते थे। उनके पास वेरिएशन थी, बॉल जो हैंग करना है कि जैसे कि हम स्टेप आउट करके बाहर जाना है और राह देखना है कि अभी बॉल कब गिरेगा और कब हम उनको हिट करेंगे, तो वो उनके पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी। मैं इलिंगवर्थ को खेला था, जैसे ऑस्ट्रेलिया में मैलेट को खेला था, लेकिन और यहाँ तो हमारे पास ऑफ स्पिनर भी थे जैसे वेंकट राघवन थे, लेकिन उनको जो पहला आत्मविश्वास मिला अनुभव पटौदी ने जो दिया उसके कारण मुझे लगता है कि वो सबसे बढ़िया बॉलिंग करना शुरू किया।
एक बार 1967 में प्रसन्ना ने बाकायदा योजना बनाकर उस समय दुनिया के सबसे अच्छे स्पिन के खिलाड़ी और बाद में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान बने इयान चैपल को चंदू बोर्डे के हाथों कैच कराया था। चैपल ने अपनी आत्मकथा चैपली में लिखा है कि उन्होंने प्रसन्ना से अच्छा ऑफ स्पिनर नहीं खेला।
एक बार प्रसन्ना ने मुझे आउट किया। शाम को हम दोनों बियर पी रहे थे। मैंने प्रसन्ना से कहा, लगता है तुमने उस गेंद में डोर बांध रखी थी। हर बार जब वो तुम्हारे हाथ से निकलती थी मैं मन ही मन कहता था मैं इसको मैदान से बाहर मारने वाला हूं, और जैसे ही मैं उसे मारने के लिए क्रीज से बाहर निकलता था तुम डोर खींच लेते थे और गेंद हमेशा पहले गिर जाती थी।
प्रसन्ना ने 1972 के चेन्नई टेस्ट में भी माइक डेनिस को यादगार ढंग से आउट किया था। वो आगे आए, शॉट पूरा किया, गेंद बाद में गिरी, छकाती हुई विकेट कीपर के पास गई और फारूक इंजीनियर ने बात की रसम पूरी की।
So I took 9 wickets in the test match and I somehow could read his, looked at him. I knew he was fully charged, and I looked at him and I knew that he's trying to come after me. And I bowled a ball which almost hung in the air, and he swung the ball, everything finished his stroke. Afterwards, the ball pitch turned, and Farooq Injum brought down all the three stumps as stumping.
भारत के मशहूर स्पिन चौगड्डे के सदस्य चंद्रशेखर कहते हैं कि प्रसन्ना, बेदी और वेंकट एक एक विकेट लेने के लिए योजना बनाते थे। प्रसन्ना तो रन देकर विकेट खरीदने में यकीन रखते थे।
वो तीनों बॉलर प्लान करते थे, फील्डर कहाँ रखने का, विकेट कैसा खेलता है, बैट्समैन कैसा खेलता है, क्लिप कहाँ रखने का, फाइन लेग कहाँ रखने का, वो एडजस्ट भी करते थे। मैं तो खाली स्ट्रेट डायरेक्शन, लेंथ एंड लाइन, उसमें कॉन्सेंट्रेट करके मैं वेरी करता था। मेरा बॉल ज्यादा जाता था शॉर्ट लेग और स्लिप में और लेग स्लिप में, इसलिए मेरे को तो वो तीन फील्डिंग लगे तो वो दूसरा फील्डिंग मैं एडजस्ट नहीं करता था। वो तीनों बहुत प्लान करते थे, बिशन, प्रेस और वेंकट।
प्रसन्ना ने 49 टेस्ट मैचों में 189 विकेट लिए। सुनील गावस्कर ने अपनी किताब आइडल्स में प्रसन्ना का दिलचस्प चित्रण खींचा है।
प्रसन्ना की खासियत थी बल्लेबाज को चकमा देने के बाद अपने बोलिंग रनअप की तरफ मुस्कुराते हुए जाना। उनकी ये मुस्कान बल्लेबाज को सबसे ज्यादा खिजाती थी। वो बल्लेबाज को बीट करने के बाद उछलते थे और आश्चर्य में अपना हाथ ऊपर ले जाते थे, मानो पूछ रहे हों कि तुम कैसे बच गए। प्रसन्ना की दूसरी खासियत ये थी कि जैसे ही वो विकेट लेते थे, दौड़कर मिडऑन पर खड़े बिशन बेदी को गले लगाते थे और फिर दोनों मिलकर जोर का ठहाका लगाते थे, मानो कह रहे हों कि उन्होंने बल्लेबाज को किस तरह बेवकूफ बनाया।
एक बार वेटर्न्स क्रिकेट में प्रसन्ना ने सुनील गावस्कर को भी अपनी मशहूर फ्लाइट और लूप का शिकार बनाया था।
एक मुझे अंशुमन गायकवाड़ ने सुनाया था, ये वेटर्न्स क्रिकेट, अगर आप देखें वेटरन्स क्रिकेट जो होती है बड़ी जद्दोजहद, क्योंकि इनके पैर तो चलते नहीं, माइंड बहुत तेज, और ये चाहते नहीं कि उस स्टेज पे भी अपनी डोमिनेंस छोड़ें। तो गावस्कर खेल रहे थे, प्रसन्ना और अंशुमन गायकवाड़ एक टीम में थे, गावस्कर बैटिंग करने आए और प्रसन्ना ने अंशुमन को बोला कि सनी को ट्रैप करूँगा, और अंशुमन खड़े शॉर्ट लेग पे, अंशुमन ने बताया ये कि क्योंकि वो तो ट्रैजेक्टरी देख रहे हैं बॉल की, वो देखते हैं हर बॉल पे प्रसन्ना ने गावस्कर को आगे खींचा है, जैसे जाते हैं गावस्कर उनको लगता है कि शायद मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, फिर अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, फिर स्ट्रेच करते हैं, फिर स्ट्रेच करते हैं, और आखिरी बॉल उन्होंने एक इशारा किया अंशुमन को, जो गावस्कर भी समझ गए कि ये कुछ करने वाला है, और वही हुआ। उन्होंने वो बॉल ज़्यादा टर्न हुई, बाउंस हुई, बैट पैड और सीधे अंशुमन के हाथ में। तो मतलब उस स्टेज पे भी अगर प्रसन्ना, ठीक है वो भी वेटरन हो गए, गावस्कर भी वेटरन है, अंशुमन गायकवाड़ भी रिटायर हो चुके थे, लेकिन कितना कॉम्पिटिटिव एक स्पिरिट था। और अंशुमन बता रहे हैं कि उछले कि सिर्फ ये बताने के लिए कि देखो मैंने जो है सनी को ट्रैप कर लिया।
1996 के विश्व कप के दौरान जब शेन वॉन नेट्स में गेंदबाजी कर रहे थे, एक बुजुर्ग शख्स उनके पास आकर बोला, बेटा तुम्हारे पास बहुत प्रतिभा है, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इसी तरह अच्छी गेंदबाजी करते रहो। वॉन उस शख्स को पहचान नहीं पाए। बगल में खड़े इयान चैपल ने उस बुजुर्ग शख्स का परिचय कराया, शेन तुम इरापल्ली प्रसन्ना से बात कर रहे हो, मेरी पीढ़ी के महानतम ऑफ स्पिनर। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। 6 साल बाद पाकिस्तान अपनी जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहा है। आज लाहौर में एक T20 मैच में उसका मुकाबला जिम्बाब्वे से हो रहा है। आपको याद होगा 6 साल पहले यानी 2009 में श्रीलंका की बस टीम पर एक चरमपंथी हमला हुआ था, जिसके बाद से पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला गया। जिम्बाब्वे इस दौरे पर यानी पाकिस्तान के दौरे पर 2 T20 मैच और 3 एकदिवसीय मैच खेल रही है। ताज़ा हाल हम आपको बता दें, जिम्बाब्वे ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। 4.1 ओवर के बाद 32 रन अभी तक जिम्बाब्वे ने बनाए हैं। पाकिस्तान में जिम्बाब्वे टीम के आने को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। बोर्ड चेयरमैन शहरयार खान,
जिम्बाब्वे का आना यहाँ मेरे ख्याल से एक बड़ा अहम कदम है, इसलिए कि हमारी कोशिश ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये दरवाजे खुलना शुरू हो जाएं تاکہ باقی ٹیمز بھی یہاں پر آنے کا سوچ لیں. ہمارے بچے کچھ تو کبھی آج تک کھیلے نہیں اپنے فینس کے سامنے, یہ پہلا وقت ہوگا جب کہ وہ اپنے ہی پبلک کے سامنے کھیل رہے ہیں. کئی لحاظ سے یہ ایک بڑا اہم قدم ہے, انہوں نے یہ دروازے کھولنے کی ہم کو موقع دیا ہے. دیکھیے سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ جو بھی ٹیم آئے یہاں پر اس کو پوری سیکیورٹی ملے. اب مجھے معلوم ہے کہ یہ سیکیورٹی دینے کے لیے پبلک کو بھی مشکلات ہوتے ہیں, روڈ بلاکس ہو جاتے ہیں, راستے بند ہو جاتے ہیں, اور یہاں اندر داخل ہونے میں بھی مشکلات ہوتی ہیں, وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن سیکیورٹی کو ہمیں دیکھنا ہے اور سیکیورٹی کو 100% ہمیں دینا ہے اس ٹیم کو, یہ ہمارا ان سے وعدہ ہے. تو اس وجہ سے کچھ تکلیف تو ہوگی, لیکن اینڈ ریزلٹ جسے کہتے ہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ آئیں یہاں آ گئے ہیں اور یہ کھیلیں اور اطمینان سے کھیلیں, ریلیکس ہو کے کھیلیں, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر کوئی وار, جیسے سری لنکا گورنمنٹ کے لیے ہوا تھا, ان ٹیم کے لیے ہوا تھا کہ اس قسم کا کوئی وار ہو ان کے اوپر. ایسا دوسرا اگر ہوگا تو پھر ہم 20 سال کے لیے گئے. تو یہ بڑا اہم قدم ہے, اس کو ہمیں انشور کرنا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی مشکل نہ ہو, کوئی قباحت نہ ہو اس میں, اور یہ اطمینان سے نکل جائے ٹور.
یہ تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان. اس موقع پر لاہور کے گدافی اسٹیڈیم میں زبردست سرکشا ویوستھا کی گئی ہے. بی بی سی کے کھیل پترکار عبد الرشید شکور نے بات کی اسٹیڈیم میں موجود ستھانیہ پترکار شاہد ہاشمی سے.
سیکیورٹی واقعی بہت زیادہ ہے, تقریباً 6 سے 7 جگہ پر آپ کو چیک کیا جاتا ہے, باڈی سرچ کیا جاتا ہے, اور آپ کے جو بھی بیگز ہیں آپ کے پاس, جن میں میڈیا کے پاس ظاہر ہے لیپ ٹاپس ہوتے ہیں, ریکارڈرز ہوتے ہیں, کیمراز ہوتے ہیں, ان کی ساری چیکنگ تھورلی ہو رہی ہے 7 جگہ پر کم از کم. اور سیکیورٹی تھوڑی زیادہ ہے, وہ کام جو 5 پولیس والے کر سکتے ہیں وہ 50 پولیس والے کر رہے ہیں, وہ کام جو 5 موبائلیں کر سکتی ہیں وہ 30 موبائلیں کر رہی ہیں, تو تھوڑی سی زیادہ ہے.
شاہد, اس طرح کی سخت سیکیورٹی تو سری لنکن ٹیم کو بھی تو فراہم کی گئی تھی, پھر بھی وہ ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا, تو اب انتظامیہ اور کرکٹ بورڈ نے کیا سبق سیکھا ہے اس سے؟
اس واقعے سے تو یقیناً کافی سبق سیکھا ہے, اسی لیے اتنی سخت سیکیورٹی ہے, اور امید بھی یہی کی جاتی ہے کہ 31 مئی تک جب آخری ون ڈے انٹرنیشنل نہیں ہو جاتا یہ اسی طرح کی سیکیورٹی رہے گی. اس لیے کہ ہمیں یاد ہے ہم وہ میچ کور کر رہے تھے سری لنکا والا, پہلے 2 دن تو بہت سیکیورٹی تھی, لیکن 3rd دن جب اٹیکس ہوئے اس دن اتنی سیکیورٹی نہیں تھی, وہ جو 8-10 موبائلیں چل رہی تھی ٹیم کے ساتھ وہ 1 یا 2 رہ گئی تھی, ریلیکس کر گئے تھے اس وقت, اور اس غلطی سے یقیناً اداروں نے بھی سیکھا ہوگا, پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی سیکھا ہوگا.
یہ تھے گدافی اسٹیڈیم میں موجود ستھانیہ پترکار شاہد ہاشمی. ادھر سرکشا پر چنتا جتاتے ہوئے آئی سی سی نے اپنے امپائروں اور میچ ریفریوں کو پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا تھا. اس پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے پورو سی او عارف علی خان ہاشمی کا کہنا تھا.
کیا یہ بات کر رہے ہیں, جب ایک ملک اتنا ایفرٹ کر کے لے کے آ رہا ہے ٹیم کو تو یہ اس میں بھی پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہ رہے, واہ بھائی واہ. تو آئی سی سی پھر کس مرض کی دوا ہے؟ دیکھیں نا, آپ اور دوسرے جو کرکٹ بورڈز ہیں وہ آئی سی سی کو چلاتے ہیں نا, آپ کے ہمارے پیسے ہیں نا وہ, تو پھر یہ اس سے بھی محروم کر دیا ہے نا, تو یہ میرے سمجھ سے باہر ہے.
یہ تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے پورو سی او عارف علی خان ہاشمی. اور میں تازہ سکور ایک بار پھر سے بتا دوں, زمبابوے پہلے بیٹنگ کر رہا ہے, 46 رن بنا کسی نقصان کے, 5.3 اوور ہو چکے ہیں. ہیملٹن مسکزادہ 39 رن بنا کے کھیل رہے ہیں اور واسو سباندا 5 رن بنا کے. اور اب چلتے چلتے مکھیہ سماچار ایک بار پھر.
بی بی سی سماچار. سعودی عرب میں شیعوں کی ایک مسجد میں ایک آتم گھاتی حملہ ور نے خود کو بم سے اڑا لیا ہے. دھماکے میں بہت سارے لوگوں کے مارے جانے اور گھائل ہونے کی خبر ہے. اسلامک اسٹیٹ کے لڑاکوں نے سیریا اور عراق بارڈر پر موجود آخری سیما چوکی پر بھی قبضہ کر لیا ہے. یہ چوکی اب تک سیریائی فوج کے قبضے میں تھی. پیرس کے مشہور ایفل ٹاور کو اسٹاف کے دوارا جیب کتروں کے خلاف پردرشن کے بعد اسے عام جنتا کے لیے بند کر دیا گیا ہے. اسٹاف کی مانگ ہے کہ ایسے چھوٹے اپرادھوں کو روکا جائے. ایفل ٹاور کا پربندھن دیکھنے والی کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ مل کر ان اپرادھوں کو روکنے کی کوشش میں ہے. میانمار کا کہنا ہے کہ اس کی نوسینا بنگلہ دیش کی سیما پر نوکا میں پھنسے 200 لوگوں کو کنارے پر لانے میں کامیاب رہی ہے. ان لوگوں کو اب سنیکت راشٹر کی مدد حاصل ہو رہی ہے. بی بی سی سماچار.
شکریہ فیصل علی محمد آپ کا, اور شکریہ راجیش چوہان کا بھی جو اسٹوڈیو سنبھال رہے تھے. اسی کے ساتھ مجھے ونیت کھرے کو سبھی سہیوگیوں کے ساتھ دیں انمتی. شروتاؤں سے ہماری اگلی ملاقات ہوگی ٹھیک 1.5 گھنٹے بعد.